मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه। कुरान मजीद की दो आयात पढ़ी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, इंसान जब कंफर्ट जोन में बैठ के बयान सुनता है तो उसको फायदा होता है। अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, ये ऐसे लग रहा है तवे पे बिठा दिया लाके किसी ने, तो ये मजेदारी वाला माहौल है नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है और इसमें आप बैठे हुए हो। तो फिलहाल गुजारा चलाते हैं, कुछ बातें आपकी खिदमत में कहता हूं, लेकिन इस माहौल में बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने जो कुरान मजीद की आयात तिलावत की है, आवाज थोड़ी बढ़ाएं यार, बहुत हल्की आवाज है, मुझे चीखना ना पड़े ना, ताकि लोड कम आए गले पे। पंखे बंद कर दें, पंखा ये उधर ले जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए सबको। मेरा तो ख्याल था अंदर करते, इतनी बाहर गर्मी हो रही है। आवाज सबको सही आ रही है? तो वो अंदर ज्यादा सही था मेरा ख्याल, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। असल में अभी नहीं, 5-10 मिनट के बाद आप लोग पिघलना शुरू हो गए, असल गर्मी उस वक्त लगेगी। अब ज्यादा है, एयर कंडीशन नहीं है मस्जिद में, माशाल्लाह। अच्छा खैर, चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कुरान मजीद की दो आयात आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और हम सबको फिर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, आज 10 मुहर्रम है, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, लेकिन इस्लामी तारीख में 1 मुहर्रम से लेके 30 ज़िलहिज्जा तक कोई ना कोई दिन ऐसा है जहां किसी न किसी शख्सियत की शहादत हुई। किसी के लिए कोई खुशी का दिन आया, कोई गम का दिन आया। इसलिए इस्लाम में किसी के वाकये की बेस पे किसी दिन की कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, यहूदी जो थे ना, यहूदी, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था, जो खुशी का दिन था, वो इतवार का दिन था। आज भी यहूदी इतवार को, सॉरी हफ्ते का दिन था, आज भी यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस दिन समझते हैं, यौमुस्सब्त जिसे कहा जाता है। यहूदियों के बाद जो कौम आई वो कौन सी थी, आप लोग मुंह से बोलेंगे, वो ईसाई कौम थी। अच्छा, जब तक पसीना निकल रहा है ना और गर्मी लग रही है, तो गर्मी के फजाइल को सोच सोच के इस गर्मी को बर्दाश्त करें आप लोग। जब किसी टेंशन का इलाज नहीं होता ना, तो उस टेंशन के फजाइल सोचने चाहिए। जब लोग दो शादियां करके पछताते हैं ना, मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको फिर फजाइल सुनाता हूं कि इस गम पे आखिरत में अजर कितना मिलेगा आपको, तो थोड़ी सी उनकी टेंशन दूर होती है। और उनकी टेंशन दूर करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि अब सारी जिंदगी इस टेंशन के लिए तैयार रहो। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाओगे आप, आदी हो जाओगे। एक आदमी किसी नजूमी के पास गया और कहा मेरा हाथ देख के बता, तो उसने कहा कि भाई 5-6 साल मजीद गुर्बत रहेगी। वो खुश हो गया कि फिर 5-6 साल के बाद गुर्बत दूर हो जाएगी। उसने कहा नहीं, उसके बाद तुम गुर्बत के आदी हो जाओगे, यानी गुर्बत की टेंशन 5-6 साल रहेगी, उसके बाद तुम्हें इस गरीबी की आदत पड़ जाएगी। तो जब टेंशन का इलाज नहीं होता तो उसका एक इलाज ये भी है कि टेंशन के फजाइल सोचे जाएं। तो आजकल मैं गर्मी के फजाइल पर बहुत बयानात कर रहा हूं कि देखो ये जो हमारा पसीना निकलता है ना, ये बैठे बैठे बेतहाशा वर्जिश हो रही है जो हम करते नहीं है। आपको पता है गर्म इलाकों के लोगों की सेहतें यानी उम्रें लंबी होती हैं, सर्द इलाकों के लोगों को अपनी उम्र को मेंटेन रखने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। गर्म इलाके के लोग बगैर कुछ किए वैसे ही लंबी 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 उम्र है। आप अफ्रीका चले जाओ 90 साल 95 साल, यूरोप जाओगे तो वो एक्सरसाइज और बहुत बेहतरीन डाइट करके अपनी उम्र को वो मेंटेन रखते हैं, सेहत को मेंटेन रखते हैं। गर्मी में फ्री फोकट की तरफ अल्लाह की तरफ से एक पैकेज मिला हुआ है आपको। फ्री फोकट समझते हैं, फ्री फोकट का पैकेज है कि इन लोगों ने जो कुछ खाया हुआ है ना, ये तो कभी हिलेंगे नहीं उसको यूटिलाइज करने के लिए। अल्लाह पसीना बहा के वो सारा कुछ निकाल देता है, जो कचरा माल, जो कचरा कुंडी हमने जमा की हुई है ना, कोलेस्ट्रॉल के घी के डब्बे बने हुए हम लोग, वो सारा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है पसीना निकलना, इसको इंजॉय किया करो। समझते हो कि नहीं समझते? गोरे आर्टिफिशियल पसीना निकलवाते हैं अपना जाके, स्टीम बात लेते हैं जाके, पता नहीं क्या क्या तकल्लुफ कर रहे होते हैं। और मेरी इस बात का यकीन अगर ना आए तो आप देख लो, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से जाके पूछो, वो कहते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन हैमरेज के केसेस, फालिज के केसेस वो ज्यादा हैं, गर्मियों में बहुत कम हो जाते हैं वो। तो कौन सा ऐसा काम है भाई जो गर्मी में हो रहा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं हो रहा या ग्रेशो कम हो गया है? इधर तवज्जो दें, ये पीछे क्या हो रहा है, कोई मैच हो रहा है भाई? आप लोग जरा यहां ना खड़े हो ना तो सब लोग आपका बयान सुन रहे हैं, जरा अंदर जाके अगर बात कर लें, ठीक है? तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारी रगों में लचक खत्म हो जाती है, खिंचती हैं, तो उससे बीपी भी हाई होता है, तलाकें भी उसी से होती हैं और फड्डे भी होते हैं। तो गर्मियों में दूसरी शादी भी ज्यादा कामयाब होती है क्योंकि बीपी दोनों का क्या होता है, नॉर्मल। आप सर्दियों में शादी करोगे ज्यादा टेंशन में आओगे क्योंकि दोनों का ब्लड प्रेशर क्या हुआ हुआ है, हाई हुआ हुआ है। तो इसलिए जब तक गर्मी का हल नहीं है तो फिलहाल गर्मी के फजाइल सोच सोच के क्या करो भाई, इंजॉय करो, समझ रहे हो? तो मैं ये अर्थ कर रहा था कि क्या अर्थ कर रहा था, मैं भूल ही गया वो जो बात लेके मैं चला था। नहीं वो तो सेहत की बात, हाँ मैं ये कर रहा था। देखो यहूदियों को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन दिया ईद के लिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहूदियों के बाद कौन सी कौम आई, ईसाई कौम आई। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है क्योंकि गलबा किसका है, ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया, इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था, अबे भाई जुम्मा क्यों बनना चाहिए था, सारा सबक ही कैंसिल हो गया, पूरा दोबारा से बताना भाई। दो और दो चार होते हैं तो दो जमा दो छह होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता, उसके बाद ईसाई कौम आई उसको दिया इतवार, उसके बाद हम आए तो हमारा कौन सा दिन बनता है, पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी, मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है, पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का, छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको क्योंकि उस पर सारे अहकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं, ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो, बहुत माजरत आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैले को तो मैला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मैले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है, उनको ताना दिया जाता है कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मैले से मैला मुसलमान हो वो भी बहरहाल क्या कर लेता है, नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसलखाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, जिस साबुन से वो नहाता है उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो, जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है। तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं, नहाते, तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया जुम्मे में। ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके, बोलो भाई, दो रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप कहें कि सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है, तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं, दो। जुमे के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं, दो। ईद के दिन भी हम नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ, और जुमे के दिन भी क्या होता है, नमाज के साथ खुतबा होता है, बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं, दो। इमाम बीच में बैठता है ना, जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं, दो होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब ये कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की, किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है, भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा, ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मा हराम, जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है लेकिन काबिले तारीफ भी नहीं है, तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं, जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है, दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में, आप देखो क्रिसमस कब है, रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्यौहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है, दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं, ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई, पीर के दिन। पैदा किस दिन हो रहे हैं, पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो, ईद करार। लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया, ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गियर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल बात, थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह को रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अकपल तरीके से चलेंगे। अकपल समझते हो, पश्तो में अकपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या, वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा हम लोग का अकपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अकपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है, अकपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अकपल, पंजाब वालों में अकपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले। तो कहना अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा ए अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग, तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग, तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे? अरब। और अरब में ज्यादातर उनमें कौन थे? कुरैशी। और कुरैश में कौन थे? हाशमी। तो इस्लाम की तो पहली जंग ने ही कौम परस्ती का गला दबा दिया कि अगर ये कौम की जंग होती तो अपनी कौम को थोड़ी तलवार उठाते। समझते नहीं हो बात को, जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को। ये हम स्कूल में ताना सुनते थे टीचरों से कि बेटा रात को किताब देख के कुछ समझ लिया करो ताकि सुबह क्लास समझ में आए। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे बात। तो सबसे पहली तलवार इस्लाम की उठी किसके खिलाफ? कौम परस्ती के खिलाफ। आज हम हर चीज में कौम का सहारा, भाई मैं ये इसलिए करता हूं हमारी रिवायात, भाई तो मुहर्रम की सबीलें क्यों लगाता है? भाई वो शिया मसला के, उनको लगाने दो, उनकी राय है। आप क्यों लगाते हो? भाई सब लगा रहे हैं, हम लोग का इलाके में ऐसा होता है, इलाके में ऐसा होता है, हम लोग के हमारी रिवायात है। एक हिंदू से मैंने पूछा कि भाई आप बुतों की इबादत क्यों करते हो? उसने कहा हमारी रिवायात है, हमारी परंपरा है। कहते हम पैदा किसके घर में हुए? हिंदुओं के घर में। कहने लगा अल्लाह को अगर मुझसे तौहीद परस्त बनाना था तो मुझे तौहीद परस्तों के घर में पैदा करता, अल्लाह ने मुझे मुशरिकों के घर में पैदा किया है, बुत परस्तों के। तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि मैं क्या करूं? बुत परस्ती। मैंने उससे कहा मेरे भाई अल्लाह ना करे आप चोरों के घर में पैदा हो जाते और चोरी करते हुए पकड़े जाते, कोर्ट में ये बयान देके छूट जाते आप। जज आपसे पूछा कमबख्त तू उसकी मुर्गी क्यों चुरा रहा था? मुर्गी मुफ्ती साहब ने पाली थी, मेरा मुर्गे चुराए असल में एक बंदे ने, एक बेहतरीन तरीके से मैंने मुर्गा पाला हुआ था एक दिन, और गलती उसमें मुर्गे की भी थी। मुर्गे को मैंने 4-6 मुर्गियां लाके दी हुई हैं, पड़ोसियों की मुर्गियों के पीछे भाग रहा है। नीच हरकत है या नहीं आप बताओ? गली मोहल्ले की मुर्गियों को तलाश कर रहा है, तेरे पास मुर्गियां कम है? तो वो यही हुआ कि फिर वो चोरी हो गया, वो तो कैमरे में देख लिया हमने, वरना वो हलाल हो जाना था। ये है बदनजरी का की सजा। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था तो मुर्गी गाड़ी के नीचे आ गई ना, वो बेचारी टक्कर हो गई। मुर्गे ने कहा कमबख्त जान दे दी, इज्जत पे आंच नहीं आने दी इसने, जान दे दी। मैं चाह रहा हूं थोड़ा आपको गर्मी कम लगे असल में, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं तड़का लगा रहा हूं। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल ही अगर मैं रुलाने धुलाने वाली बात करूंगा तो पहले ही आप रो रहे हो इस गर्मी में, फिर आप और ज्यादा रोगे। तो मैंने कहा मेरे भाई फिर तो आपको चाहिए था, आप कहीं मुर्गी चुराते हुए पकड़े जाते, आप अदालत में जाते, आप बयान देते कि भाई मेरे तो अब्बा भी मुर्गी चोरी करते थे, मेरे तो दादा चपले चुराया करते थे, वालदा मोहतरमा कुंडा लगा के बिजली चुराया करती थी, तो मैंने चोरी कर ली। तो अल्लाह अगर मुझे ईमानदार बनाना चाहता था तो चोरों के घर में पैदा क्योंकि ये कोई दलील है। लेकिन हम उस हिंदू बिचारे का तो मजाक उड़ा रहे हैं। उसूली तौर पर हम सब इसी तरह ही अमल कर रहे हैं कि मेरे पड़ोस में ये होता है, मेरे मुल्क में ये होता है, मेरे दोस्त ये करते हैं, मेरे ऑफिस में ये होता है, मेरे फलाने के यहां ये होता है, तो चूंकि हमारी परंपरा है, हमारे यहां ये हो रहा है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करना पड़ेगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये के मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं ना कि पीर का दिन मुकद्दस होगा, भाई जुम्मे का दिन हमारा कौन सा होगा, असल में पीर का दिन जुमा होगा हमारा, पीर के दिन हम जमा हुआ करेंगे। तो ये तसव्वुर आता कि ये ईद का दिन है हमारे लिए, ये आता ना तसव्वुर। लेकिन नबी उस दिन पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं, फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन, क्या ख्याल है भाई, थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया, असल तो 12 को लगेगा लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए, पीर को भी थोड़ा सा हो ना। जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए, जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है, चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा, जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया, बोलो खत्म, क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। कभी आपने देखा आपको कोई खुशी मिली, आपके बेटे ने A+ से एग्जाम पास कर लिया, अब दोस्त कह रहे हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, आपने कहा ठीक है सुबह का नाश्ता सब छोड़ दो, खुशी में सब क्या करो, सुबह का नाश्ता छोड़ दो, कोई लॉजिक बनती है भाई क्या क्या? खुशी में सब क्या करो, नाश्ता छोड़ दो। कहा भाई क्या कर रहा है, नाश्ता छोड़ दो तो क्या मतलब, तू खिलाएगा नाश्ता, कह रहे बस छोड़ दो ताकि हम खुशी को मनाएं। ज्यादा खुशी हुई है दोनों बच्चे A+ से पास हुए, लंच भी छोड़ दो, और अगर इकट्ठी 4 शादियां हो गई हैं, सुबह सादिक से लेके गुरुबे आफ्ताब तक खाने पीने का नागा, वलीमे में लोगों को बुलाओ, खजूरें भी नहीं, बुलाओ और बोलो आज खाने का नागा है, ऐसा वलीमा देखा आपने, हर खुशी के मौके पे खिलाना और पिलाना। ईद उल फितर खुशी का मौका, रोजा हराम, ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे, ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए, खाने पीने का दिन, हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम है, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वली में एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को, वलीमे का हुक्म है तो वलीमा करता है, पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, पकड़े जाने का खतरा भी होता है लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए, कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है, खुशी हुई है। क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा आप। बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हैमरेज का खतरा है, ये सब गर्मियों के काम है, जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी, मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है, बंदा आया उसके ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर गिरा जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है, किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना, तो इसलिए कैंसिल कराई मैंने, कहा ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर, तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना, इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान सुन्नत और अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो, ये अस्हाबे रसूल मैंने कहां से लगा दिया बीच में। आप कहोगे भाई इस्लाम तो नाम है कुरान और सुन्नत का, अस्हाबे रसूल कहां से लगा दिया, अस्हाबे रसूल कुरान से ही लगाया हमने, अस्हाबे रसूल किस कहां से लगाया, कुरान से लगाया। कुरान कह रहा है मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे सहाबा के बारे में, जब मुसलमान हुए ना अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हुम बिलाल हबशी अब्दुल्ला बिन मसूद अबू हुरैरा, ये सारे अस्हाबे रसूल, इनमें ज्यादातर गरीब सहाबा की थी, जब ये मुसलमान हुए तो मुशरिकीन मक्का ने बोला कि सरदार तो हम हैं, दौलतमंद हम लोग हैं, अकल हम में ज्यादा है, तो अगर इस्लाम वाकई खैर की चीज होता तो हम पहल करते, हम पहले मुसलमान होते, ये गरीब गुरबा ये पहले मुसलमान हो रहे हैं, ये इसकी अलामत है इस्लाम खैर की चीज नहीं है। तो कहते हैं लव कान खैरन, भाई एक जगह बैठ जाए आराम से। अच्छा, लव कान खैरन, वो कहते हैं इस्लाम अगर खैर की चीज होता, मा सबकूना इलैही, तो ये मुशरिकीन मक्का हम पे सबकत ना करते, हम पहल करते। जैसे कोई शख्स किसी को समझा रहा होता है ना कि यार अगर ये अच्छा काम होता तेरा भाई सबसे पहले इसमें आगे होता, मैं नहीं कर रहा इसका मतलब काम ही ठीक नहीं है। अबे भाई कारोबार कहीं कोई चूना लगा रहे होते हैं ना बिल्डर, ये बिल्डिंग बन रही है, अब वो दूसरा बिल्डर बना रहा है, आप वाला बिल्डर बना नहीं रहा, आप उसके पास गए यार सुना इसमें इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा है, कह रहा है अबे भाई अगर होता मैं तुझे खुद पहले बताता यार, मैं खुद अपना पैसा लगाता, तेरे भाई को तजर्बा ज्यादा है। तो मुशरिकीन कहते थे कि अगर ये इस्लाम खैर की चीज होता तो हम पहल करते, ये गरीब गुरबा पहल ना करते। तो हमारा ये अकीदा है कोई भी अगर इस्लाम में खैर का काम है, लसबकूना इलैही, तो सहाबा हम पे पहल करते। ये कैसी बात है कि सहाबा ने पहल नहीं की और हम उनसे आगे बढ़कर अपने आप को उनसे अच्छा मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपनी औकात से आगे निकलने वाली बात है। समझते हो कि नहीं समझते हो, अब मुझे बताओ मुहर्रम सहाबा के दौर में आया कि नहीं आया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद भी आया मुहर्रम, तो क्या किया सहाबा ने भाई उस गम में, क्या उनको गम नहीं हुआ होगा नवासे रसूल की शहादत का, या हमें गम हो रहा है उनको नहीं हो रहा था। जो नबी से मोहब्बत करते थे उनको नबी के नवासों से मोहब्बत हमसे कम होगी या ज्यादा होगी। कितनी अजीब बात है कि मैं मोहब्बत का इजहार करूं और ये शो करूं कि मुझे उनसे मोहब्बत ज्यादा थी। देखो घर में बाप जब बीमार होता है, छोटा भाई ज्यादा फंटर बनने की कोशिश कर रहा हो खिदमत में, बड़े भाई को साइड पे लगा रहा हो, बड़ा क्या कहेगा, क्या तू ही बेटा है मैं नहीं हूं क्या, उसको अपनी इंसल्ट महसूस होगी ना। अगर मोहब्बत होगी तो इंसल्ट महसूस होगी, नहीं होगी तो कहेगा अच्छा चलो यार ये कर रहा है मेरी जान छूटी हुई है। तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है सहाबाए किराम की कि हम दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद करें कि जिसके बारे में हमें पता हो कि सहाबा कर सकते थे, मौका भी था, नहीं किया फिर भी उन्होंने, और हम उनसे दो हाथ आगे बढ़कर वो काम करने की कोशिश करें। ये जो 15 शाबान में लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, इनसे मैं यही कहता हूं भाई 15 शाबान में अगर कब्रिस्तान जाना सुन्नत होता तो कोई एक सहाबी तो गया होता, क्या ख्याल है भाई? कोई तो एक सहाबी गए होते। एक ज़ईफ हदीस है कि नबी गए हैं, मान लो वो सही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 15 शाबान की रात ज़ईफ हदीस के मुताबिक अकेले में गए अंधेरे में, और आप कैसे जा रहे हो? जत्थे बना के। नबी अकेले में गए हैं कि अम्मी आयशा को भी पता ना चले, और आप जा रहे हो किसके साथ? दोस्तों के साथ। नंबर दो, नबी गए हैं, कोई भी सहाबी 15 शाबान को कब्रिस्तान बोलो नहीं गया, तो ये कैसी सुन्नत है कि सहाबा ने जिंदा नहीं की, आप जिंदा कर रहे हो? तो बिदअत से अपने आप को बचाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस्लाम किस चीज का नाम है? रुसूमात का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है, देखो ये रुसूमात मुशरिकीन मक्का में भी बहुत ज्यादा थी। अभी तो मैंने आपको वो काम बताया ना जो नहीं करने, रबीउल अव्वल नहीं मनाना, हमारे लिए वो ईद का दिन बोलो नहीं है। मुहर्रम में हमें सैयदना हुसैन के शहादत का बे इंतहा गम है, लेकिन उस गम को मनाने की हमें इजाजत नहीं है। यकीनन गम है, क्यों नहीं है भाई? कायनात का बदतरीन जुल्म हुआ है नवासे रसूल पर, इसमें दो राय नहीं हो सकती। अहले बैत कट गए, करना वही है जिसकी हमें अल्लाह ने इजाजत दी है। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अनु नबी के चचाजात भाई, वही रिश्ता जो अली से रिश्ता रजी अल्लाह अनु से, जब शहीद हुए तो आपकी चार बीवियां बेवा हुई हैं, चारों के रोने की आवाज आई चार दीवारी से बाहर। आपने पहले फरमाया जाके इनको चुप कराओ, फिर अगर वो फिर खामोश नहीं, फरमाया जाके मुंह पे खाक मारो, कि औरत की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर पसंद नहीं है। मैयतों पे रोना और चिल्लाना इस्लाम में हराम है। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैयतों पे हमें किस बात का हुक्म है? सबर करो, किसी की भी मैयत हो वो काम करो जो अहले बैत ने किया है। तो जो काम करने का है वो मैं आपको बताता हूं। ये वाले सारे काम हमने क्या करने हैं? नहीं करने। कुछ काम नहीं करना इबादत होता है। और फिरकावारियत इससे नहीं फैलती कि आप अपने मसलक पे मजबूत हो, फिरकावारियत इससे फैलती है कि आप दूसरों को जाके छेड़ते हो। शिया हजरात जो कर रहे हैं करने दो, हमारा अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा मसलक है अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब क्या, ये खूब समझें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। ये जो लोग आजकल एक मंजन बेच रहे हैं, इस्लाम में फिरके ही नहीं है। अब एक ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ बात कर रहे हो, नहीं है तो ये क्या आ गया मार्केट में इतने सारे? ऐसे तो इस्लाम में चोर भी नहीं है, लेकिन क्या मुसलमानों में चोर है या नहीं है? बहुत है। अब एक आदमी, एक अब्बा अपने बेटे से कह रहा है, बेटा चोरों के साथ मत बैठना, ईमानदारों वालों को फॉलो करना, ईमानदारों के साथ बैठना, उन्हीं के मसलक को फॉलो करना, चोरों के मसलक को फॉलो ना करना। बेटा अब्बा से, अब्बा बेटा ज्यादा फंटर निकला, उसने कहा अब्बा इस्लाम में तो चोर है ही नहीं, कोई एक हदीस बताओ जिसमें इस्लाम में चोरों की फजीलत हो। अब्बा कहेगा बेटा इस्लाम में चोर नहीं है, तभी तो कह रहा हूं कोई चोर नजर आए तो उनके साथ मत बैठना, आके बैठना उनके साथ जो ईमानदार हो। हकीकत में चोर है, क्या ख्याल है भाई? और अगर मेरा ख्याल है अगर हम गिनना शुरू करें तो कोई लेबोरेटरी टेस्ट आ जाए ना, तो शायद, माजरत के साथ आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, चोरों की तादाद ज्यादा निकले, क्या ख्याल है भाई? हकीकत में देखा जाए ना तो लगेगा इस्लाम में है ही चोर, अल्लाह बचाए हम सबको, सिवाय चंद लोगों को छोड़ के, यानी इस्लाम का मतलब मुसलमानों में। लेकिन इस्लाम चोरी को अप्रिशिएट नहीं करता, तो इस्लाम फिरकावारियत को पसंद नहीं करता, लेकिन मुसलमानों में फिरके बहरहाल हैं। अब जब फिरके हैं तो करना क्या है? सारे फिरकों को बम से उड़ा दें? तो वो करना जो हमें नबी ने हुक्म दिया है। फिरके जब फैल जाए तो क्या करना है तुमने? फरमाया उस फिरके को फॉलो करना है जिसमें ये अलामत पाई जाए। वो अलामत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। बनी इसराइल 72 में थे, मेरी उम्मत एक स्टेप आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी। ये कितने फिरकों में बटेंगे? 73। कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नमी, उन फिरकों में एक क्या होगा? जन्नती। एक फिरका कहां जाएगा? जन्नत। अब नबी से पूछा गया, सहाबा ने हम पे एहसान किया कि उसे एक जन्नती का पूछ लिया ताकि हमारी कंफ्यूजन क्या हो, खत्म। वरना ये सुन के तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि अबे 73 में 72 जहन्नमी, हमारा पता नहीं क्या, हमारा किसमें शुमार होगा। تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ فرما دیتے وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کا نام ہوگا دیوبندی تو سب شناختی کارڈ پہ کیا لگاتے ٹھپا؟ دیوبندی. سب کی پگڑیاں سفید ہوتی ہیں. ٹنڈ تو کرا بہت معذرت کے ساتھ کراتے ہی نہیں لوگ تاکہ سفید پگڑیاں. اور اگر نبی فرما دیتے اس فرقے کا نام, آپ کو دیکھ کے مجھے سکون مل رہا ہے, واحد آدمی ہو, بہت سکون مل رہا ہے آپ کو دیکھ, ماشاءاللہ خرچہ ہو گیا لیکن کام اچھا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ فرما دیتے اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی تو میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا, صحیح ہے نا, ہرے ہرے جھنڈے یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے. اگر نبی فرماتے تھے بھائی وہ شیعہ فرقہ ہوگا تو ہم ابھی سب جلوس میں گئے ہوئے ہوتے, کیا خیال ہے بھائی, سارے وہ بن جاتے. اگر نبی فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوگا, کچھ بھی فرما دیتے سب وہی نام رجسٹر کرا لیتے, اس سے کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. کہ ابھی اگر مثال کے طور پر نبی فرماتے وہ اہل حدیث ہوں گے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ والے ہوں گے وہ والے ہوں گے یہ والے ہوں گے وہ والے ہوں گے, سارے ہی کیا ہیں, ایک ہی جیسے, یعنی نام سب کا سیم ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, اس فرقے کے اندر علامت بتائیے کہ جس میں بھی یہ علامت پائی جائے بھلے وہ کسی بھی نام سے ہو. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, اس کے کاموں کو دیکھو, نام کچھ بھی ہو اس سے غرض نہیں ہے, کام دیکھو, یہ علامت پائی جاتی ہے تو جنتی ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلہ سناتا ہوں نا, دیکھو ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا چاول. لوگوں نے کہا بھائی بوری کے اندر چینی ہے, اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. وہ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مکھیاں جب آئیں گی دیکھیں گی چاول ہے تو واپس پلٹ جائیں گی. تو بتاؤ مکھی لیبل دیکھ کے دھوکے میں آئے گی؟ وہ چاول کی خوشبو, وہ چینی کی خوشبو سے پہچان جائے گی, وہ بولے گی بھائی تو اس پہ زہر بھی لکھ دینا پھر بھی میں بیٹھوں گی اس کے اوپر, خوشبو اس کے اندر زہر والی نہیں ہے. آج پتہ ہے ناموں میں, کہ میں کہتا ہوں میرا نام اہل حدیث ہے اس کا مطلب میں حدیث کو فالو کرتا ہوں, وہ کہتا ہے میرا نام اہل قرآن ہے اس کا مطلب میں قرآن کو فالو. بھائی نام سے نہیں پتا چلے گا, عمل سے پتا چلے گا کہ کس کو نام کچھ بھی ہو اس سے شریعت کو غرض نہیں ہے, کام دیکھا جائے گا اصول کیا ہے تمہارے. تو اس لیے نبی نے بتایا کہ جیسے چینی میں خوشبو ہوتی ہے نا, وہ جنتی فرقے میں بھی ایک خوشبو ہوگی. وہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ, قرآن کی وہ تشریح کریں گے جس پر میرا عمل ہوگا, اور وہ اصحابی, اور میری حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ سے ثابت ہوگی, صحابہ کے اگینسٹ نہیں ہوگی. اب کتنے لوگ خطیب قرآن سے دلائل لے رہے ہیں, یہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے, بھائی یہ مطلب ہے تو صحابہ کیوں نہیں عمل کر رہے اس کے اوپر, کیا خیال ہے بھائی. آج کل ایک تین طلاق کا مسئلہ میں ہر جگہ اس لیے بیان کرتا ہوں, بہت چل رہا ہے, دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں لوگ, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے تین ایک ہوتی ہیں. اب قرآن میں لکھا ہوا ہوتا تو ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے تین طلاق کو ایک کہا ہو, کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دو آپ, اس کا مطلب قرآن آپ زیادہ سمجھ رہے ہو, کسی بھی صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن سنت کے ساتھ صحابہ کو اٹیچ کرنا پڑے گا, نہیں آئی بات. قرآن و سنت کی یا حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ سے میچ نہ کرتی ہو, اس سے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. یعنی ختم تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط. محرم صحابہ کے دنوں میں آیا, اگر صحابہ نے ماتم کیا کرنا چاہیے, نہیں کیا تو آپ بی سی او آیتیں قرآن کی ہمارے سامنے پیش کر دو, بی سی او حدیثیں, ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا منہ سے بول لینا چاہیے نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہے نا جیسے ایک دور میں, ابھی کیا سیاسی باتیں مناسب نہیں ہے کرنا نا, تو وہ پھر ٹاپک نہ چینج ہو جائے, کیا بولوں میں. جیسے میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا, تو مجھے ہر بندہ آتا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ کام مت کرو, اور میں بیٹھ کے ایسے نا انجوائے کرتا تھا اس کی بات. جب میں کہتا آپ کے دلائل ختم ہو گئے, وہ سمجھتا تھا میں وہی اٹھ کے کر رہے ہیں, ہم نے پوری کتاب لکھ دی تھی بھائی اس موضوع پر, تو ہمیں سمجھانے آئے ہو. تو میں ایسے آرام سے بیٹھا ہوتا تھا, ایک ایک گھنٹہ لوگ آ کے تقریر کرتے کچھ, ابے نہیں اس کے یہ سائڈ. پھر جب وہ ان کی تقریر ختم ہوتی مجھ پہ جون ہی رینگتی تھی, کیونکہ میرے سامنے اتنے دلائل آ چکے تھے نا اس کے برحق ہونے کے, कि मुझे इत्मीनान हो गया था भाई इस जमाने में इससे बड़ी शायद कोई नेकी ना हो। इसमें आप किसी बेवा तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो यार, इसमें कौन सी दो राय हो सकती है। यहां तक कि एक आदमी ने मुझे कहा ना, मैंने कहा तुम्हारी बेटी तलाक याफ्ता हो और उसके रिश्ते ना हो रहे हो और कोई इससे दूसरी कर रहा हो, तू मना करेगा उसको? अगर मना करेगा तो अपनी बेटी पे जुल्म कर रहा है, इजाजत देगा तो ये क्या बात है? दूसरों की बेटियों के लिए उसूल कुछ और, अपनी बेटियों के लिए उसूल कुछ और। चुप हो जाते थे वो। तो ना जब वो आते थे मुझे दलाइल देते थे, मैं चुप करके बैठे रहता था। उसके बाद जब मैं बोलना शुरू करता तो उल्टा समझ के चले जाते वो। फिर जिसने उनको भेजा होता था उसको कह रहे थे मैं भी करूंगा, उल्टा हो जाता था हिसाब किताब, समझ रहे हो? उल्टा हो जाता था। तो इसलिए जब कुरान और हदीस की कोई ऐसी तशरीह कर रहा है जिसपे सहाबा का अमल नहीं था तो इधर से सुनो और इस कान से बोलो निकाल दो, क्योंकि नबी ने जन्नती फिरके की अलामत बताई है भाई वो तशरीह जो सहाबा से साबित हो, सहाबा के अगेंस्ट चलने की तुम्हें इजाजत नहीं। अब रबीउल अव्वल के कितने दलाइल कोई दे दे, ईद का दिन है, फलाना दिन है, झंडिया, भाई उनको लगाने दो। हमारे पास एक दलाल है उमर ने, एक दलील है हमारे पास जो है ना, एक दलील है उमर ने क्यों झंडे नहीं लगाए, अबू बकर ने क्यों तंबू नहीं लगाए, क्या ख्याल है भाई? हजरत उस्मान ने देख, कोई एक चावल दिखा दो यार, कोई रबीउल अव्वल पे कोई एक खजूर दिखा दे जो खुशी में खिलाई हो कि चलो आज रबीउल अव्वल है। तो आप जब नहीं है तो इट मीन्स खत्म, दलाइल देते रहो आप, हमारी सेहत पे इससे कोई असर बोलो नहीं पड़े। वो एक हिंदू ने किताब लिखी, हमारे एक रिश्तेदार मेरे सगे मामू है, मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, हिंदू ने किताब लिखी और कहा मैंने किताब लिखी है कि मुसलमानों में जो चार शादियों का रिवाज आया ना, ये पता नहीं 300-400 साल के बाद आया, ये बिदत, इस्लाम में ये नहीं है। तो उन्होंने कहा उस किताब को किसी बकरी भरी को खिला दे, कोई भी नहीं पढ़ेगा। वो बेचारा किताब लिख के आया था, उसने कहा यार क्यों, क्या भाई कुरान में लिखा हुआ है यार, तो तू कौन सी किताबें लिख के आ रहा है, हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है, उस हिंदू को पता ही नहीं था। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस काबिल ही नहीं होती कि उनको सुना जाए। देखो जब कोर्ट में केस जाता है ना तो पहले कोर्ट ये देखती है कि ये मेरी हुदूद में ये केस आता भी है कि नहीं आता। आप फैमिली कोर्ट में कत्ल का केस ले गए और दलाइल दे रहे हैं ये कातिल है, जैद ने मारा है फलाना, कोर्ट कहेगी भाई चाय मंगवाओ, खाना मंगवाओ, वो सुनेगी नहीं, वो कहेगा भाई ये मियां बीवी के झगड़ों वाली कोर्ट है, इसमें तलाक फौजदारी जो केसेस हैं वो इसमें देखे नहीं जाते। तो जब कोई चीज सहाबा से साबित ही नहीं है तो कोई कुरान और हदीस के अंबार भी लगा दे आपको, भाई ये सुनने के काबिल है ही नहीं। अगर ये खैर का काम होता तो ये दलाइल सहाबा के सामने भी तो थे। तो ये वो काम है जो हमने नहीं करने। मुहर्रम फजीलत वाला महीना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोजा रखना है। आज मैंने रोजा रखना था, आपके बयान की वजह से छोड़ा मैंने रोजा, क्योंकि सुबह टाइट गर्मी थी, मैंने कहा दोपहर भी मेरे कहीं बयान था और मैंने कहा असर के बाद भी, तो रोजा का हो जाएगा बयान नहीं होगा, तो मैं इस स्पीड से कर नहीं पाता। फिर मैंने इनको बोला ईशा के बाद बयान कर लो ताकि हम रोजा रख लें। तारिक बंगे जो है ना हमारे लंगोटी यार हैं, वो नहीं भी तारिक बंगे जो यहां तकरीर करके गए, वो खड़े हुए वहां, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। और आपको पता है बचपन का दोस्त कैसा ही नालायक होना बना के रखो, क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है, समझ रहे हो? बचपन का दोस्त कैसा ही नालायक क्यों ना हो, उससे हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानते। तो अभी इन्होंने बोला बयान है, मैंने कहा बयान है भाई, क्योंकि सब जानते, मैं भी जानता हूं फिर इनके बारे में, ऐसा नहीं है, तो हम लंगोटी यार हैं। तो मैंने इनसे कहा था यार ईशा के बाद रख लो, रोजा रखना है लोगों ने, 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत है, तो इफ्तार करके ईशा के बाद आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आज ही, तो फिर मैंने रोजा छोड़ दिया इस चक्कर में, तो मुझे पता था बिल्कुल ही निढाल हो जाऊंगा मैं। आज गर्मी भी तो देखो क्या कड़ाकेदार गर्मी है। तो मुहर्रम में करने का काम है रोजे रखना, इस पे आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। सईदना हुसैन शहीद हुए हैं किस हालत में? रोजे की हालत। रबीउल अव्वल में कुछ भी नहीं करना आपने, सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पर जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना, ये शरण जायज बोलो नहीं है। हम अल्लाह रसूल को फॉलो करेंगे भाई, और उस तरीके पे जिस तरीके से सहाबा किराम ने फॉलो किया है। अब ये तो वो सारे काम थे जो इस्लाम में नहीं करने के हैं। अब आप कहोगे करने का तो बता दो क्या करना है, तो आओ मैं बताता हूं आपको, उसी स्टाइल में बताता हूं जिस स्टाइल में अल्लाह ने बताया है। मुशरिकीन मक्का में भी बहुत सारी रसूमात थी ऊट पटांग किस्म की, और वो ये समझते थे कि इस इन कामों से अल्लाह खुश होता है। वो जानवरों को छोड़ दिया करते थे अल्लाह के बुतों के नाम पे, वो समझते अल्लाह खुश होगा कि अल्लाह के महबूब बंदे थे इनके नाम पे हमने छोड़ दिया। और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे, बैतुल्लाह का बरहना तवाफ करते थे, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन्हीं कपड़े पहन के अल्लाह के घर की जियारत करें। अजीब किस्म का तकवा है या नहीं है भाई, तो बगैर कपड़ों के हम क्या करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ। घर में जब हज करने जब जाते तो जाते दरवाजे से थे, आते दीवार फलांग के थे, ऊट पटांग रसूमात थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ये सब चीजों को छोड़ दो। अल्लाह करे क्या, अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कुल तआलौ, सूरह बनी इसराइल सूरह अनआम में फरमाया कुल तआलौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं बताता हूँ तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है। तो वो चीजें अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर बयान की हैं। वो चीजें क्या हैं, कज़ा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपना अकीदा ठीक करो, उस खुदा के सिवा अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, ये सारे नारे इनमें से कोई एक नारा भी तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है, सिर्फ या अल्लाह मदद। इया का ना अबुदू का मतलब ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं, ना 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 ना, अगर ये मतलब होता ना हम तेरी इबादत करते हैं तो होता ना अबुदू का, जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में होता, तो यहां ऑब्जेक्ट मुकद्दम है, इया का पहले है, इससे हसर का फायदा होता है। इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुश्किल कुशा हाजत रवा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ किसके पास है भाई, अल्लाह के पास है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मोहताज, फरिश्ते भी पैगंबर भी बुजुर्ग भी। मैं बार बार एक वाकया सुनाता हूँ भाई, एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे मुझे फालिज हो गया, आधा धड़ खराब हो गया मेरा, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत मन्नतें मानी, ठीक नहीं होके दे रहा, मुझे किसी ने कहा है कि फला बाबा के मजार पे जाना ठीक हो जाओगे। मैंने कहा जिस बाबा के मजार पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो कब्र में गए हैं, क्या ख्याल है भाई। तो जिनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे, क्या ख्याल है। बाद लोगों को कुरान और हदीस समझ में नहीं आता, बाद लोगों को कोई अकली दलील दे दो तो समझ में आ जाती है। तो मैंने कहा भाई वो तो अगर थोड़ा सा भी उनका धड़ काम कर रहा होता ना, जब वो गुसल के लिए लिटाया हुआ होता उनको, और थोड़ा सा धड़ हिल जाता तो वो सारे फट्टे पे लेटे हुए होते जो उनको गुसल देने, खौफ से मर चुके होते वो। तो भाई अंतमुल फकारा, सारे क्या हो, फकीर। असबाब से हटके ताकतें सिर्फ किसके पास है, अल्लाह के पास, सब बराबर। पैगंबर का मकाम इसलिए बुलंद है, इसलिए नहीं कि आपके पास इख्तियार है, इसलिए कि हमें अल्लाह से मिलाने वाले हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, ये कम मकाम है क्या। तो अल्लाह ने फरमाया ये करने का काम है, ये मुहर्रम में भी करना पड़ेगा, सफर में भी, रबीउल अव्वल में भी, रबीउस सानी में भी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। दूसरा काम अल्लाह ने फरमाया वक़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है, वालिदैन का। इतना बड़ा हक है कि कोई ये दावा ही नहीं कर सकता कि मैंने अपने बाप और मां का हक पूरा कर दिया है। हम असल में अपने बचपन को भूल जाते हैं, तभी मैं कहता हूं जब तुम्हारी शादी हुआ करे और बच्चा पैदा हुआ करे अपनी बीवी को देखा करो कैसे उस बच्चे के लिए मरती है, और खुद अपने आप को देखा करो तुम्हें कैसी मोहब्बत है उससे। बाप मर जाए उस बच्चे की बाप की तलाफी नहीं हो सकती। लोग पालते हैं यतीमों की तरह पालते हैं, एहसान जितलाते रहेंगे सारी जिंदगी, अबे हमने पाला है इसका तो बाप मर गया था, ले पालक की तरह पालेंगे उसको। ईदी सेंटर में भी पल जाते हैं बच्चे, बाप की गोद में बच्चा जिस इज्जत के साथ पलता है और जैसे सर उठा के जीता है, ये बाप के अलावा और मां के अलावा ये गोद उसको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन बड़ा होकर शैतान बन जाता है, भूल जाता है। वो कहते हैं ना एक शख्स बूढ़ा हो गया, तो उसने बुढ़ापे में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, उसने बेटे से पूछा, पढ़ा लिखा बेटा था, पढ़े लिखे बच्चों के पास आपको पता है टाइम नहीं होता, उन्होंने न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरीज पढ़ी भी होती है, उनपे रिसर्च का काम कर रहे होते हैं वो, तो अब्बा के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो बाप ने पूछ लिया दीवार पे कौआ आके बैठा हुआ था, नजर बेचारे की कमजोर थी, याददाश्त भी कमजोर थी, पूछा बेटा ये क्या है, बेटे ने बोल दिया कौआ, भूल गए अब्बा। फिर दोबारा पूछा बेटा ये क्या है, फिर बेटा, बेटे ने कहा बोल तो दिया कौआ। थोड़ा सा बेटे का लहजा क्या हो रहा है, चेंज। फिर तीसरी दफा बाप ने पूछा ये क्या है, अब बेटे ने झिड़क दिया। झिड़कना पता है किसे कहते हैं, जो मुलाजमीन को नहीं झिड़का जाता, चलो यहां से चुप हो जाओ। कुरान में साफ अल्लाह ने फरमाया ला तनहरहुमा, बाप और मां को तुम्हें झिड़कने की इजाजत, बोलो ये जो सर्वेंट वाला मामला है, चलो यहां से। जैसे इमाम साहब को झिड़का जाता है ना कमेटी की तरफ से, यानी नहीं झिड़का जाता, सॉरी गलती से, बार दफा मेरे मुंह से सच निकलता है फिर मैं रिवर्स करता हूं उसको। तो ला तनहरहुमा, अल्लाह कहते हैं इनको झिड़कना, ये जो है ना ऐसे जो स्टाइल नहीं होता मुलाजिमों वाला, बता तो दिया, सुनते नहीं हो क्या, बोल तो दिया, ये स्टाइल जाके अपने बॉस के साथ करो, ये स्टाइल वहां गुना नहीं मिलेगा, सिर्फ जॉब जाएगी आपकी, समझ रहे हो कि नहीं। एक आदमी बहुत बदतमीज था, उसको पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो गया, बहुत चीखता था ना घर में भी बाहर भी, जरा जरा सी बात पे अब्बा के सामने बहुत चीखता था। मैंने उसको समझाया, कह रहे हैं यार मेरे बर्दाश्त नहीं होता, मैं हार्ट पेशेंट हूं और मेरे से नहीं, अब्बा की हरकतें भी तो देखो ना। उसको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, एक दिन ऑफिस में चाय वाले पे चीख गया, वो बॉस पे नहीं चीखा, किस पे चीखा है, चाय वाले, तो सुना दी हाइपर हो जाता था वो, तो ऑफिस का माहौल खराब हुआ। बॉस ने बोला बेटा ये फर्स्ट टाइम है और ये लास्ट टाइम है, दोबारा ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कोई चाय का खोखा नहीं है, ये गोले गंडे की दुकान नहीं है, यहां आप बैठ के चीख रहे हो, यहां सुई भी गिरेगी तो आवाज आती है, ऐसी खामोशी चाहिए। एक दफा चीख गए, आपको मोहलत दे रहा हूं, दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। माशाल्लाह कई साल उन्होंने वहां जॉब की है, उसके बाद दोबारा चीखने का एक भी केस सामने नहीं आया। ब्लड प्रेशर भी था ना, ब्रेन हैमरेज से मरे। बाद दफा आदमी गुस्सा कंट्रोल करता है तो उधर से फट जाता है ना दिमाग उसका, कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह हयात है। वजह क्या है, उधर बाप और मां है, वहां अल्लाह हुक्म दे रहा है कि कंट्रोल करो अपनी जबान को। वो बाप बेचारा क्या बिगाड़ेगा आपका, वो बुढ़ापे में निकाल भी नहीं सकता आपको घर से, उसको पता है मेरा आखिरी सहारा है ये, गया तो मैं कहां जाऊंगा, लिहाजा उस पर गणित जो है ना तान के, और कह रहे होते हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वही जब बॉस सामने होता है तो सब कुछ, बोलो बर्दाश्त। अब उन्होंने ब्रेन हैमरेज पे कैसे कंट्रोल किया होगा, गुस्सा आने लगा होगा तो फजाइल सोचे होंगे, अब गुस्से की क्या बात है, ये चाय तो हर जगह लेट हो जाती है, कपड़ों पे गिर भी जाती है, इस बहाने कपड़े धुल जाएंगे, क्या ख्याल है, बहुत सारी चीजें सोची। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सबसे पहले अकीदा तौहीद, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया मुहर्रम हो या सफर हो या रबीउल अव्वल हो, माँ बाप के साथ बदसुलूकी, बोलो नहीं करना, ला तनहरहुमा, इनको झिड़कना नहीं है, इनके लिए दुआएं मांगनी है। और खूब समझ लो, जो बाप का हुक्म है, दादा दादी नाना नानी का भी माँ और बाप वाला हुक्म है। जो अहकाम शरीयत ने बाप और माँ को दिए, सेम वही अहकाम किसको दिए, बाप और माँ के वालदैन को भी वही हुकूक दिए। आज गैर मुस्लिम सोसाइटी में घरों के अंदर जो बूढ़ा है उसकी 2% की वैल्यू नहीं है, ओल्ड हाउस में तो वैल्यू है, उसका अपना पोता उसे कोई वैल्यू नहीं देगा। गोरों में आपको नजर नहीं आएगा अपनी दादी के कदमों में जन्नत तलाश कर रहा है, होंगे कुछ अच्छे भी होंगे, मेजोरिटी ऑफ ओल्ड हाउस। तो हमारे लिए इजाजत नहीं है, जो मां का हक है वही किसका है, दादी नानी का। तो इस्लामी सोसाइटी में घर के बूढ़े की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आपको उसको बदतमीजी से बात करने की इजाजत नहीं है, रिस्पेक्ट देनी है आपने उसको। नमाज में पुकारे तो नमाज तोड़ के जवाब देना है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तीसरा हुक्म अल्लाह ने क्या फरमाया, वातिज़ल कुर्बा हक़हू, अल्लाह ने मां बाप को अलग, फिर फरमाया जो दीगर रिश्तेदार हैं, जितना करीबी रिश्ता हो उसका हक उतना ही ज्यादा। अब्बा के मरने के बाद बड़ा भाई अक्सर छोटे भाइयों की विरासत पी जाता है, अल्लाह ने फरमाया ये काम मत करना। चाचे को आप बता दो ना इतने पैसे मिले हैं, उसके बाद चाचा और पैसे दोनों मार्केट से शॉर्ट हो गए। मेरे पास आए एक साहब ने तो सवाल पूछा था कि डॉक्टर ने मेरे, अच्छा भाई बस मैं 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे अब्बा ने, डॉक्टर ने मेरे चाचा को बोला जो कुछ मिले खाओ, यानी सब खा सकते हो, तो वो मेरे अब्बा की विरासत खा गए। डॉक्टर से उन्होंने पूछा क्या क्या खा सकता हूं, उन्होंने कहा सब कुछ खा सकते हो, सेहत इतनी अच्छी थी सब कुछ, तो वो क्या खा गए, मेरे मैं यतीम हूं, मेरे अब्बा की सारी जायदाद ही खा लो। तो अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदारी क्या करनी है, जोड़नी है उनको, उनका हक देना है। वआति ذل قربى حقه والمسكين وابن السبيل, मुसाफिरों का ख्याल करना है, गुरबा और मिस्कीनों का ख्याल करना है, और कराबतदार रिश्तेदार का ख्याल करना है। आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में एक भाई करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, दूसरे भाई के पास खाने के पान गुटके के खर्चा भी नहीं होता, वो गुटके के लिए भी तरस रहा होता है। गुटका नहीं खाना चाहिए लेकिन पैसे तो होने चाहिए ना गुटके के उसके पास, फिर ना खाए वो उसकी मर्जी है। एक है गुटका नहीं खाता, इज्तनाब करता है, ये तो अच्छी बात है। एक है गुटके के पैसे ही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी गुटका नहीं खाता, पैसे हैं मेरे पास गुटके के, पैसे ही ना होते ये तो बहुत बड़ी गुर्बत की बात है यार। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह फरमाते हैं, ये सारे केसेस में जो लोगों में देख रहा हूं ना वो बता रहा हूं। मेरे पास कितने भाई आए हैं कि यार मेरा बड़ा भाई अरबों रुपए कमा रहा है, मैं बेरोजगार हूं, सिगरेट पान के पैसे भी नहीं देता वो, लेकिन इतना तो कर लेना। तो अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों को उनका हक देना है। क्या मतलब, रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उसका आपके माल में हक है, इस नीयत से देना है कि खुश कौन होगा, अल्लाह होगा। फिर अल्लाह ने इन्हीं आयतों में आगे भी बहुत सारे हकाम दिए, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, जिना मत करो। अल्लाह ने औरत तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता रखा, वो क्या है, निकाह। ला तकरबु जिना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत फटको, करीब भी मत जाओ जिना के। और मुआहदों की पाबंदी करो, औफुल अहद, जब कोई एग्रीमेंट हो जाए, मालिक मकान किराएदार का एग्रीमेंट होता है, मालिक मकान 10-10, 15-15 तारीख तक फोन कर करके याद दिलाता रहता है, हजरत किराए का टाइम हो गया है, और किराएदार जवाब में क्या कहता है, पहली तारीख होते ही सर पे आके खड़े हो जाते हो, तो भाई तुम्हारा जो मायदा हुआ है तुम खुद उसके अकाउंट में पैसे डाल दो ना। और अल्लाह भला करे, मैं कहता हूं किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना उसके किराएदार बन जाओ, 10 साल के बाद जो घर का बेड़ा गरक होगा ना वो कहेगा कमबख्त जितना किराया नहीं लिया मैंने, जितना घर की रिपेयरिंग में पैसा खर्च हो रहा है। अपना घर होगा, मैं तभी किसी को बाइक देता था ना, कहता था अपनी बाइक समझ के इस्तेमाल करना भाई, मेरी गाड़ी समझ के इस्तेमाल मत करना। तो ये क्या है, मुआहदों की अमानतों में क्या हो रहा है, खयानत। तो अल्लाह कह रहे हैं अमानतों में खयानत मत करो, मुआहदों की खिलाफ वर्जी मत करो। ये और बहुत सारे अहकाम है, वक्त पूरा हो चुका है, बहुत से लोगों का रोजा है, उन्होंने इफ्तार भी करना है, तो इसलिए मैं इसको यहां समेट रहा हूं। ये है इस्लाम भाई, ये क्या है, इस्लाम है। बाकी सब क्या है, रसूमात हैं, इंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ जरिए हैं जिन पे मजहब का लेबल लगा दी। कव्वाली भी लोग नाचते हैं ना, कव्वाली में है वो इंटरटेनमेंट भाई, कुछ लोग फिल्म जाके देख लेते हैं, कुछ कव्वाली में क्या करते हैं थरकते हैं, इंटरटेनमेंट है। एक इंटरटेनमेंट पे मजहब का लेबल लगा हुआ है, एक पे मजहब का लेबल नहीं लगा हुआ है, दोनों क्या, इंटरटेनमेंट ही है। तो जो करने के काम है उसको फोकस करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और आप सब रात को भी मुख्तसर दुआ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।